नमस्कार, वी द चेंज सीरीज में आप सभी का स्वागत है। ब्रह्मा कुमारी की सोशल मीडिया की ये विशेष आउटरीच आप सभी के बीच में पिछले कुछ दिनों से चल रही है। पिछले 25-26 दिनों में हमने कोशिश यही की है कि हम आपके घरों तक सीधे पहुंचे। अगर आपके मन में कोई सवाल है, अगर कोई चीज के लिए आप गाइडेंस चाहते हैं, सपोर्ट चाहते हैं, तो वो चीज हम आपको दें, ये कोशिश हमारी बनी हुई है। वी द चेंज में आप सभी लोगों ने बढ़ चढ़कर हिस्सा लिया, अपने दिल के दरवाजे हमारे लिए खोले और बेझिझक हमसे बातचीत की। ऐसे बहुत सारे पर्सनल सवाल भी हमारे बहुत सारे दोस्तों ने बिना हिचकिचाए हमसे पूछा और इस बात से हमें बेहद खुशी है कि आप हमें अपना समझते हैं। और इसी अपनेपन से ब्रह्मा कुमारी के वरिष्ठ राजयोगी बहने और भाई आपसे मिल रहे हैं और आपसे बातचीत कर रहे हैं और जितना हमसे हो सकता है स्पिरिचुअल विजडम, गाइडेंस और सपोर्ट देने की कोशिश की जा रही है। इस बदलाव के दौर में, अपने आप को बदलने की हम सब की कोशिश में, हम यानी ब्रह्मा कुमारीज की तरफ से ये छोटी सी पहल आपके लिए मददगार हो रही है, ऐसा मानते हैं। हर दिन की तरह हमारे पास एक मास्टर ऑफ मेडिटेशन है, एक ऐसी स्पिरिचुअल हस्ती है जिन्होंने अपने जीवन काल में लाखों लोगों का मार्गदर्शन किया है। ऐसे विशेष अनुभूति हमारे साथ मिलकर बातचीत करने के लिए आज हमारे बीच मौजूद रहेंगे। हमारे साथ आज ब्रह्मा कुमारी सुषमा दीदी जी हैं, जो जयपुर से हमारे बीच में जुड़ी हैं। दीदी जी पिछले कई दशकों से ब्रह्मा कुमारी के सेवाओं के साथ संलग्न होकर अविरल सेवाएं कर रही हैं और अनेकों को इस आध्यात्म के पथ पर मार्गदर्शित किया है। एक प्रखर वक्ता होने के साथ साथ एक अकम्पलिश्ड योगी हैं। आइए आज उनसे हम बातचीत करते हैं। दीदी जी, आपका वेलकम।
थैंक यू। ओम शांति।
दीदी, जैसे ये वक्त बीत रहा है तो हम में से बहुत सारे लोग धीरे धीरे अपने आप को सेट करते जा रहे हैं। कुछ लोग बहुत क्विकली अडेप्ट कर पाए अपने आप को और कुछ लोग अभी भी सोच रहे हैं कि उम्मीद कर रहे हैं कि चलो ठीक है, अब अडेप्ट करना ही पड़ रहा है। बहुत बार अक्सर हम ये सुनते हैं, मैनेजमेंट बुक्स में पढ़ते हैं, लोग ये कहते हैं कि बदलना जो है एक मुश्किल प्रक्रिया है, अगर तुम नहीं बदलोगे तो समय तुम्हें बदल देगा। मगर आप सभी के साथ ही ऐसा हुआ है कि सभी के ऊपर एक ही समय आया है, तो आप इस बदलाव के दौर को कैसे देखते हैं? कैसे आप स्पिरिचुअली लोगों को कहेंगे कि इस बदलाव के दौर को एक पॉजिटिव आउटलुक से देखा जाए?
ओम शांति। ये जो वर्तमान में एक चेंज आया है, ये बहुत बड़ा है। हमने कभी ये सोचा नहीं था कि सारी दुनिया एकदम इकट्ठी ठहर जाएगी। ट्रक के चक्के जाम होते सुने थे, देखे थे, बस के चक्के जाम होते सुने थे, देखे थे, लेकिन अमेरिका का चक्का भी जाम, रशिया भी जाम, इंडिया भी जाम, सारी दुनिया जाम हो जाएगी, ऐसा तो हमने कभी सोचा नहीं था। इसमें बहुत सी बातें हैं। मुझे तो यूं लगता है कि हम मनुष्य सृष्टि पर रहते हैं और कहा गया है कर्म प्रधान विश्व रचि राखा। भगवान ने ये कर्म प्रधान सृष्टि बनाई है और इसमें हम जो जो कर्म जैसे जैसे करते हैं हमारे सामने आते रहते हैं। मनुष्य को अपने भाव और भावनाओं को बदलने की आवश्यकता है। मैंने इस समय में स्वयं भी इस बात को एक्सपीरियंस भी किया, प्रैक्टिस भी किया, महसूस किया। जितनी हमारी भावनाएं शुद्ध होंगी, जितना हमारे मन में दूसरों के लिए भाव श्रेष्ठ होंगे, तो हम प्रसन्न रहेंगे और दूसरों को भी प्रसन्नता दे सकते हैं। तो ये वक्त आया है हमें ये सिखाने, खुश रहो, खुश रखो, सोचो मत।
तो ये जो आपने बात कही कि खुश रहो, खुश रखो, अक्सर करके हमने इस इक्वेशन को एक अलग तरीके से समझा है। दीदी, अक्सर हम ये देखते हैं कि हम लोगों को खुश करना चाहते हैं, पहले हम अपनी खुशी के बारे में नहीं सोचते। हमें लगता है कि दूसरों की खुशी के लिए हमें करना चाहिए, हम अपने बच्चों को खुश करने के लिए, अपने हस्बैंड या वाइफ को खुश करने के लिए, पेरेंट्स को खुश करने के लिए चीजें करते हैं, और फिर बाद में जब वो खुश नहीं होते हैं तो हमें लगता है तुम्हारे लिए इतना सब कुछ किया, तुम्हारी खुशी के लिए किया, अपने आप की खुशी को सैक्रिफाइस करके किया, फिर भी तुम्हें कोई फायदा देखने को नहीं मिलता, तुम अभी भी हमारी कमजोरियां ही गिनते हो। तो ये चीजें होती हैं। तो ये जो आपने बात कही कि खुश रहना है फिर खुश रखना है, ये हमने एक इक्वेशन को दूसरी तरीके से समझा है, आप इसके बारे में क्या कहना चाहेंगे?
श्री भाई बात ये है, खुश रहना और खुश रखना ये ऐसा उलाहना देने वाली बात नहीं है। मैंने आपके लिए ये किया, मैंने ये किया, तुम फिर भी खुश नहीं होते हो। गुलाब का फूल, उसमें खुशबू है। अब आपको खुशबू अच्छी लगती है या नहीं लगती है ये तो आपकी चॉइस है। गुलाब कभी उलाहना नहीं देता कि अरे मैं इतना सुंदर, मेरी खुशबू इतनी अच्छी, सारी दुनिया अप्रिशिएट करती है, सब जो है एक गुलाब लेके प्रेजेंट करते हैं और तुम मेरे को ऐसा समझते हो। नहीं, खुशी में रहना माना मेरा नेचुरल स्वभाव हो जाए। मैं एक फूल हूं कौन सा, जो सदा खुश है, जो सदा खिला हुआ है। अगर मैं सदा खिला हुआ फूल हूं तो जो दूसरे मेरे संपर्क में आएंगे, जो मेरे साथ आएंगे, चाहे सहयोगी बनेंगे, वो सब स्वतः ही खुश रहेंगे, क्योंकि मैं रूहे गुलाब हूं, मेरा काम ही है सबको खुशी देना, तो कोई नाराज होगा नहीं। एक बात। दूसरी बात, उलाहना देने की आवश्यकता ही नहीं है। आपका हो सकता है स्वभाव नहीं है खुश रहने का, मैं तो खुशी देती रहूं। मनुष्य आंख से जो देखता है ना उसको ज्यादा स्वीकार करता है। अगर मैं इस समय आपको देख रही हूं और बोल तो अच्छा अच्छा रही हूं, बहुत अच्छी बात है, लेकिन चेहरा थोड़ा ऐसा ग्रिम सा कर रहा हूं, ये पता नहीं कैसा कौन व्यक्ति है, आपको कैसा लगेगा? लेकिन मेरा चेहरा खुद भी स्माइलिंग हो तो अगर मैं इतना अच्छा भी ना बोलूंगी ना तो भी आपको लगेगा ये बहन जी ने सुनाया तो इतना बढ़िया नहीं, लेकिन मुस्कुराहट बहुत अच्छी थी। तो इसलिए हमारा अंदर बाहर एक हो। हम उलाहना इसलिए देते हैं क्योंकि अंदर एक्सपेक्टेशंस हैं कि आप कहें अरे वाह तुमने तो मुझे कितना खुश किया। नो कंप्लेंट, नो एक्सपेक्टेशन। लेकिन मेरा स्वधर्म, स्वधर्म माना मेरा कर्म जो है वो है ही खुशी देना, इसलिए मैं खुद भी खुश रहती हूँ और दूसरों को भी खुशी देती
हूँ। बहुत अच्छी बात है दीदी। जो हमारे दोस्त ये प्रोग्राम देख रहे हैं YouTube पर, Facebook पर या किसी भी प्लेटफॉर्म पर जहां पर आप इस प्रोग्राम को लाइव देख रहे हैं, अगर आप सवाल पूछना चाहते हैं, कोई बात हमारे साथ शेयर करना चाहते हैं, कोई चीज है जो आपको लग रहा है कि नहीं मुझे दिल हल्का करना चाहिए, तो आप शेयर कर सकते हैं हमारे साथ, हम एक शाउट आउट दे सकते हैं इस वीडियो के कमेंट सेक्शन में, फेसबुक और यूट्यूब पर, कहीं पर भी आप कमेंट सेक्शन में लिख सकते हैं। उनमें से कुछ कमेंट्स को हम स्क्रीन पे दिखाएंगे। अगर आपके कुछ प्रश्न हैं, कोई ऐसी बात है, तो हम दीदी जी से उसके लिए मार्गदर्शन भी लेंगे। इसे हटकर अगर आपके पास कोई ऐसे सवाल है जो प्राइवेट है, अगर आप शेयर नहीं करना चाहते अपना नाम और आप चाहते हैं आपके नाम को प्राइवेट रखा जाए, तो हम कोशिश यही करेंगे कि हम आपके नाम को गुप्त रखेंगे। तो आप ऐसे सवालों को सोशल मीडिया @brahmakumaris.com पर भेज सकते हैं, उन सवालों को भी हम लेने के लिए तत्पर रहेंगे। तो अगली सवाल की तरफ मैं आगे बढ़ता हूँ। ये सवाल हमारे साथ YouTube से आ रहा है। वो कहते हैं, ओम शांति, आई एम अ स्टूडेंट, सिंस पास्ट फ्यू डेज आई हैव बीन गोइंग थ्रू द एग्जाम स्ट्रेस, प्लीज टेल व्हाट शुड आई डू। अब इतने दिन लॉकडाउन चलता रहा तो सारी चीज बंद रही, जैसे आपने कहा चक्का जैम था, तो स्टूडेंट्स ने भी आराम से इस जैम को एंजॉय किया क्योंकि एग्जाम्स पोस्टपोन हो गया, अब अचानक एग्जाम्स के डेट्स अनाउंस हो रहे हैं, तो अब इतने टाइम पढ़ाई की जो आदत छूट गई है, अब उसको सब समेटने में थोड़ी दिक्कत आ रही है, तो एग्जाम स्ट्रेस महसूस हो रहा है। ऐसे में क्या करें, ये गाइडेंस मांगते हैं।
अगर हम स्टूडेंट हैं, स्टूडेंट का तो काम ही है हमेशा टेस्ट देना, इम्तिहान देना। यूं भी ये जिंदगी तो एक इम्तिहान ही है, हम अपनी जिंदगी में पल पल इम्तिहान दे रहे हैं। वो पढ़ाई का इम्तिहान कोई बड़ी बात नहीं है। एक मेरी सजेशन स्टूडेंट्स के लिए हमेशा ये रहती है कि हमें अपनी पढ़ाई में रेगुलर इन टच रहना चाहिए। एक्चुअली बहुत से स्टूडेंट्स ने इस लॉकडाउन में क्या किया, सारी किताबों को समेट करके अपनी अलमारी में रख दिया है, देखी जाएगी जब पेपर होंगे, पर अभी भी कोई बात नहीं। अभी हमारी डेट्स अगर डिक्लेयर नहीं हुई या होने वाली हैं या हो भी गई हैं, तो आप अंडर स्ट्रेस नहीं आए, आप तो पढ़ना शुरू कर दीजिए, पढ़िए, अपना एक टाइम टेबल डेली रूटीन बना लें कि मुझे 4 घंटा 6 घंटा, क्योंकि स्टूडेंट लाइफ है, उसको और कोई काम तो है नहीं, एक ही काम है, पढ़ाई पढ़नी है। तो जब मुझे पढ़ाई पढ़नी है तो मैं क्या करूं, अब मुझे पढ़ने की ओर ही फोकस करना है, यही मेरे जीवन का लक्ष्य है। हम क्या करते हैं, जब स्टूडेंट हैं तब तो हम घूमना चाहते हैं, जब हमारे घूमने के दिन आते हैं तब हम पढ़ना चाहते हैं, जब कमाने के दिन आते हैं तो सोचते हैं थोड़ा और पढ़ा हुआ होता तो ज्यादा अच्छा था। इसलिए पहले अपना वर्तमान, यू आर हियर नाउ, हमें यहाँ नाउ पे टिकना है। अभी मैं क्या हूँ, मैं अभी स्टूडेंट हूँ, इसलिए मुझे अच्छी तरह से पढ़ना है। और अपना ध्यान अगर पढ़ाई पे अभी भी फोकस करेंगे, आपके इम्तिहान में एक हफ्ता, 10 दिन, 15 दिन अभी भी हैं, तो आप 6 घंटा पढ़ाई पढ़िए। कई लोग कहते हैं 6 घंटा, बाप रे कौन पढ़ेगा, 6 घंटा क्या मुश्किल है, 2 घंटा सवेरे, 2 घंटा शाम को, 2 घंटा रात को, बस दैट्स ऑल। तो आप अगर अपनी कोई रूटीन बना लेंगे और अगर लक्ष्य है कि मुझे पढ़ना है, मुझे डिग्री लेनी है, मुझे आगे बढ़ना है, जिंदगी का ये एक मौका है आपके लिए, गोल्डन अपॉर्चुनिटी है, जब आप अच्छी तरह अपने जीवन की नींव को पक्का कर सकते हैं। एक्चुअली जब हम पढ़ते हैं तो हम उसको बर्डन मानते हैं, ये बर्डन नहीं है, ये मेरे जीवन की फाउंडेशन है, इसलिए मुझे फाउंडेशन को अच्छी तरह से अभी पक्का करके सुंदर रूप से डालना है। इसलिए पढ़िए, उसको बोझ समझ के ना पढ़े, लेकिन ये पढ़ना भी मेरी एक कमाई है, ये समझ के पढ़े, उसका आनंद लीजिए, पढ़ाई का आनंद लीजिए, ये मौका फिर नहीं आएगा। इसलिए आप इस मौके का आनंद लीजिए, स्ट्रेस की आवश्यकता नहीं है, एग्जाम को एंजॉय कीजिए, जो आएगा जो होगा देखी जाएगी, फेल तो होंगे नहीं ये तो पक्का है, क्योंकि अनपढ़ तो है नहीं, पढ़े तो हैं, और थोड़े नंबर ऊपर नीचे हो जाएंगे तो कोई बात नहीं, उदास नहीं होना, खुश रहना।
बहुत अच्छी बात है दीदी जो आप ये कह रहे थे कि एग्जाम को भी एंजॉय करना सीखें। अक्सर ये कहा जाता है कि भाई कश्ती अगर बनाई जाती है तो वो समंदर में उतारने के लिए, दरिया में उतारने के लिए बनाई जाती है, अगर वो वहीं पर खड़ी रहे जिस यार्ड में बनी है तो फिर तो क्या मतलब, उसे तो तूफानों से, पानी से लड़ना ही है, इसीलिए उसे बनाया है। और स्टूडेंट लाइफ में ये चीज है कि एग्जाम को भी एंजॉय करना सीखना चाहिए, एग्जाम को स्ट्रेस नहीं समझें, और पढ़ाई हमारा उद्देश्य।
बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल, हमारा जीवन ही पढ़ाई है
जी। अगले सवाल की तरफ मैं बढ़ता हूँ दीदी। कुछ दोस्त हमारे फेसबुक से सवाल पूछ रहे हैं, कुछ लोग यूट्यूब से सवाल पूछ रहे हैं। आप अपने सवालों को जितना कंसाइज रखने की कोशिश करेंगे उतना हमारे लिए आसान होगा। मैं अगला सवाल ले रहा हूँ। सवाल है फेसबुक से, हमारे साथ शेफाली जुड़े हैं, शेफाली सिन्हा नाम है इनका। शेफाली जी कहते हैं, इन दिस WFH यू आर नॉट फेस टू फेस, हाउ टू डील विद द नार्सिसिस्टिक माइंडसेट बाय स्टेइंग साइलेंट एंड नॉट सेइंग एनीथिंग बट द एनर्जी इज टर्बुलेंट फ्रॉम द अदर साइड। आजकल सब कुछ वर्चुअल हो रहा है, जहां पर क्या हो रहा है दूसरे साइड पे कुछ पता नहीं चल रहा है, हम वर्क फ्रॉम होम कर रहे हैं, प्रोग्राम्स भी ऐसे वर्चुअल हो रहे हैं जहां पर हम लोगों को सिर्फ सुन पा रहे हैं, ऐसे भी कुछ चीजें हो रही हैं जहां पर बच्चों को टीचर्स पढ़ा रहे हैं, क्लासरूम्स भी ऐसे वर्चुअल क्लासरूम्स हो गए हैं जहां पर लोग वीडियो, सिर्फ टीचर का वीडियो देखते हैं, बच्चे वीडियो पे आते नहीं हैं, तो टीचर्स को भी ये ऐसा लगता है कनेक्ट जो है वो महसूस नहीं होता, आपको ऐसा ही लगता है जैसे आप अपना ही चेहरा देख के बातचीत कर रहे हैं, ऐसा भी बहुत सारी जगह हो रहा है। तो बहुत सारे लोगों को ये नार्सिसिज्म लग रहा है कि हम अपने आप को देख के ही चीजें कर रहे हैं, और शेफाली जी का ये चीज कहना है कि हम ऐसे नार्सिसिस्टिक माइंडसेट को कैसे देखें जहां पर हमें चुपचाप साइलेंट रहना है, कुछ कहना नहीं है, मगर दूसरी तरफ से हमें कुछ टर्बुलेंट इन्फॉर्मेशन मिल रहा है, कोई ऐसी चीज कही जा रही है जो हमें अच्छी नहीं लग रही है, अंदर उथल पुथल हो रही है, तो क्या किया जाए कहते हैं।
देखिए ये तो बहुत आसान सी बात है शेफाली जी, इसमें क्या दिक्कत है। अब आपने अपना क्वेश्चन पूछना था तो आपके पास साधन है, आपने फटाफट यूट्यूब पे अपना क्वेश्चन भेज दिया। अगर आपको मेरी बात अच्छी ना लगे फिर तुरंत क्वेश्चन करिए, देखने की बात नहीं। अब दुनिया बदल गई, समय बदल गया, अब लगता है हमें हो सकता है आगे और भी कुछ समय ऐसा ही चलना पड़े, तो थोड़ा सा हमें अपने आप को मोल्ड करना पड़ेगा, ढालना पड़ेगा, लेकिन हम ये ना सोचें ये क्या सिस्टम है, ये क्या हो रहा है, हम फोन पे आगे बात करते थे, अभी तो फिर भी चलो कम से कम शक्ल तो दिखाई दे रही है। अगर मैं बोल रही हूँ आप मुझे नहीं दिखाई दे रहे, लेकिन मैं तो आपको दिखाई दे रही हूँ। आगे हम फोन पे बात करते थे, लैंडलाइन हुआ करते थे, तो कौन सी शक्ल दिखाई देती थी? मोबाइल पर भी कौन सी शक्ल दिखाई देती है? हाँ व्हाट्सएप आदि पे बात करते हैं तो फिर भी चलो दिखाई देता है। ये अभी ऐसे कई साधन आ गए हैं। तो क्या करते थे, जो बात करते रहे उसमें हमने किसको देखा? केवल एक दूसरे की भावनाओं को समझा और संबंध को समझा। मैं किससे बात कर रही हूँ, भाई से कर रही हूँ, बहन से कर रही हूँ, माँ से कर रही हूँ, फ्रेंड से कर रही हूँ, उस भाव से। ऐसा कभी नहीं हुआ कि आप माँ से बात कर रहे हो और आप भूल जाएं कि मैं माँ से कर रही थी या फ्रेंड से कर रही थी। तो इसमें कुछ ऐसी अजीब बात नहीं है, ये तो हम जो आज तक कर रहे थे वही कर रहे हैं। और जो अंदर में उथल पुथल हो रही है, खिचड़ी पक रही है, खदबद खदबद हो रही है, तो आप तुरंत भेज दीजिए प्रश्न, फिर भेज दीजिए, आपके प्रश्न का जवाब फिर आ जाएगा। ये तो कोई प्रॉब्लम नहीं है
जी, इससे
मुझे तो कभी लगता नहीं।
जी दीदी, जैसे आप कह रहे थे इससे मिलती जुलती बात उन्होंने अभी शेयर की है, उस पर वो थोड़ा क्लैरिफिकेशन दे रहे हैं। शेफाली जी कहती हैं कि ये जो बात है, कभी कभार हम लोग ये डील तो करना चाहते हैं, हम ये मान भी लेते हैं कि चलिए ये हो रहा है ऐसा, बट कुछ लोग ऐसे होते हैं जो इन चीजों को नहीं समझते हैं। जैसे कुछ लोगों की ये बात होती है कि वो बहुत ही ज्यादा कोअर्सिव होते हैं, वो अपनी बात हमारे सामने रखते हैं, बट ये नहीं कहते हैं कि हम कैसा फील करते हैं, ये इसके बारे में नहीं सोचते। कभी कभार हम चीजों के रिसीविंग एंड पे रह जाते हैं और इसकी वजह से वो सिर्फ अपने बारे में सोच कर ही वो बात कह रहे हैं, हमारे बारे में क्योंकि हम अपनी कोई आवाज बता नहीं पा रहे हैं या इस सिचुएशन की वजह से हम एक्सप्रेस नहीं कर पा रहे हैं, तो हमारी बातों को कंसिडरेशन में नहीं लिया जा रहा, ये नहीं सोचा जा रहा कि हम क्या सोच सकते हैं। लोग अपने ही बारे में सोच रहे हैं और उनको जो सही लगता है वही हमको कह रहे हैं कि भाई आपको यही करना है।
लोग क्या सोचते हैं आजकल, ये भी मुझे तो यूं लगता है एक बीमारी सी हो गई है। हम हर घड़ी ये सोचते हैं कि लोग मेरे बारे में क्या सोचते हैं, या लोग जो कह रहे हैं जो वो सोचते हैं वो ही बोलते रहते हैं। लेकिन उस परमपिता परमात्मा ने हम सबको विवेक दिया है, जो बात हमें ठीक लगती है हम उसको जरूर करें। लोग मेरे बारे में नहीं सोच रहे या गलत सोच रहे हैं, आप उनको सोचने की स्वतंत्रता दीजिए, क्योंकि हम किसी की सोच को रोक नहीं सकते, ना हम किसी के बोल को। कई कहते हैं इसने मुझे ऐसे बोल दिया, हम कितनों के मुंह पे सेलो टेप लगा सकते हैं? नहीं लगा सकते हैं ना, सोच पर हम लॉक नहीं लगा सकते हैं। लोग क्या सोच रहे हैं आप छोड़िए, लेकिन मैं क्या सोच रही हूं, मेरी सोच अच्छी होनी चाहिए, मेरा रास्ता अपना क्लियर होना चाहिए। मेरी सोच क्लियर है तो मुझे कोई डिस्टर्ब नहीं कर सकता।
बहुत अच्छी बात है दीदी। बहुत बार हम ये भूल जाते हैं कि हमारी सोच ही इन्फ्लुएंस करती है। हम भले शेयर नहीं करते बट फिर भी हमारे विचारों का असर संबंधों पे होता है, लोगों तक हमारे विचार पहुंचते हैं, भले वो शब्दों से नहीं हो बट हमारे विचारों का असर जरूर होता है। अगले प्रश्न की तरफ मैं बढ़ना चाहता हूँ। ये जो बदलाव का दौर आया है दीदी, इस समय पे बहुत सारे लोग अपने हेल्थ के प्रति कॉन्शियस हुए हैं, लोग अपने फिजिकल हेल्थ के बारे में भी, मेंटल हेल्थ के बारे में भी बहुत सारे लोग कॉन्शियस होते आए हैं, और शायद ब्रह्मा कुमारी जी ने जो कोशिश की है, इस कोशिश की वजह यही रही है कि ब्रह्मा कुमारी जी के पेज पे बहुत सारे लोगों ने हेल्प की डिमांड की, उन्होंने भांति भांति के प्रश्न पूछे, उनकी सिचुएशंस हमारे साथ शेयर की। तो अब हेल्थ के बारे में जब हम बात करते हैं तो अगला सवाल मैं लेना चाहता हूँ रंजना चरक जी से, जो फेसबुक से हमारे साथ जुड़े हैं, फेसबुक पे लाइव देख रहे हैं। वो कहते हैं, सिस्टर दीज डेज मेनी अ टाइम्स इंस्टेड ऑफ डूइंग मेडिटेशन आई फील कंसर्न्ड एंड वरीड अबाउट माय फ्रेंड्स, सो मेनी अ टाइम्स आई स्किप मेडिटेशन, मेक अ कॉल टू माय फ्रेंड्स टू मेक देम फील हैप्पी एंड रिलैक्स, काइंडली से समथिंग अबाउट दिस सिचुएशन एंड गाइड मी अ लिटिल बिट। रंजना जी का कहना है कि बहुत बार मैं मेडिटेशन करने को छोड़कर मैं अपने दोस्तों के बारे में फिक्र करती हूँ, तो इसके लिए मैं उनको फोन कर देती हूँ, फोन करके उन्हें खुश रखने की कोशिश करती हूँ, उनके साथ अच्छा कॉन्वर्सेशन करने की कोशिश करती हूँ, तो आप मुझे इसके बारे में गाइड करें, क्या ये सही एस्पेक्ट है, सही मैं कर रही हूँ या नहीं?
ये बहुत अच्छी बात है कि हम अपने फ्रेंड्स को मदद करें अगर वो कोई उदास हैं, कोई थोड़े डिप्रेस हैं, इस प्रकार से हैं। लेकिन जो मेडिटेशन का समय है वो तो मैं समझती हूँ अधिकतर लोगों का, मुझे नहीं मालूम रंजना जी आपका कौन सा समय है, लेकिन अधिकतर मेडिटेशन का समय तो मॉर्निंग में ही होता है। आप अर्ली राइजर नहीं भी होंगे तो 6 बजे अगर मेडिटेशन करते हैं तो 6 बजे तो जरूर उठते होंगे आप। 6 से 7, 6 से 8 अपना समय अपने लिए रखिए कि मुझे इस समय में खुद को ही चार्ज करना है, अपने आप को ही हेल्दी फिजिकली मेंटली जो है इमोशनली मुझे अपने आप को जो है हेल्दी बनाना है। और फिर अगर हमारे चाहे रिलेशंस हैं, फ्रेंड्स हैं, कोई भी हैं, उनको हम मदद करना चाहते हैं तो पूरा दिन पड़ा है आप उनको मदद कीजिए, लेकिन मेडिटेशन को नहीं छोड़ना है। हमारी फर्स्ट प्रेफरेंस मेडिटेशन है, क्योंकि अगर मैं खुद अपने आप को एनर्जाइज नहीं करती हूँ तो मैं दूसरों को कैसे एनर्जी दे पाऊंगी। और जो पहले श्री जी आपने कहा था कि लोग अपनी हेल्थ के लिए बहुत कॉन्शियस हैं, इसके लिए मैं जरूर सुजेस्ट करना चाहूंगी हर व्यक्ति आजकल ज्यादा नहीं तो 2 घंटा अपने लिए जरूर दे। आप कहेंगे 2 घंटा, यस, आप अपने लिए ज्यादा नहीं तो 45 मिनट्स मेडिटेशन के लिए दीजिए और 1 घंटा फिजिकल आप चाहे एक्सरसाइजेस कीजिए, मॉर्निंग वॉक कीजिए, प्राणायाम कीजिए, स्ट्रेचिंग कीजिए, कुछ भी कीजिए, लेकिन इस शरीर को ठीक से चलाना ये भी बहुत जरूरी है। और तीसरी बात कि हमारा जो भोजन है वो भी बहुत सात्विक भोजन होना चाहिए, ऐसे नहीं जो आया खा लिया। वैसे तो ये लॉकडाउन ने सबका बहुत भला कर दिया है। आप कहेंगे क्या भला किया, मैंने देखा था आगे हमारा सेंटर भी ऐसी जगह है मेन रोड पर, बाहर ठेले ठेली वाले खड़े रहते हैं, अच्छी अच्छी बड़ी बड़ी गाड़ियों में लोग आते हैं, ठेले वाले से चीज लेते हैं, वही खड़े होके खाने लग जाते हैं, कोई हाइजीनिक बात ही नहीं है। सड़क पर इतना पेट्रोल, इतना पोल्यूशन, सब लोग भूल गए थे हमें कैसा खाना है। तो एक तो अपने घर में अब लोग बना रहे हैं, अब रह सकते हैं ना नूडल्स के बिना, रह सकते हैं ना पास्ते के बिना, पास्ता खा खा के पस्त हो गए, अब घर का अच्छा खाना खाओ, सात्विक भोजन खाओ। तो शरीर को ठीक रखने के लिए आप अच्छा भोजन कीजिए। और देखिए आप प्रकृति कितनी मेहरबान है, मैं तो इस प्रकृति को बहुत धन्यवाद देती हूँ। आजकल गर्मी का मौसम है, आप फ्रूट्स देखिए मार्केट में, तरबूज आजकल है, खरबूजा आजकल है, आम आजकल है, लीची आजकल है, चेरी आजकल है, प्रकृति ने इतना फल दिया है, जी भर के खाइए और अपने आप को तंदुरुस्त रखिए, मेंटली फिजिकली खुश रहिए।
बहुत ही अच्छी बात आपने दीदी कही कि देखने को देखा जाए तो बहुत सारे प्रॉब्लम्स नजर आएंगे। जब हम पॉजिटिव्स देखने की बात करते हैं तब हमें पता चलता है कि देखिए एक्चुअल में कितनी अच्छी चीजें भी हो रही हैं हमारे साथ, और जब आप इन चीजों को पॉइंट आउट कर रही हैं तो हमें देखना आसान हो रहा है कि हाँ चलिए ये चीजें हैं कि एक एक करके हम गिन सकते हैं कि क्या चीजें हमारे साथ पॉजिटिव हो रही हैं। अगले प्रश्न की तरफ मैं बढ़ना चाहता हूँ। जूही जी का प्रश्न है और जूही फेसबुक से हमारे साथ जुड़े हैं, ये उनका पर्सनल प्रश्न है। मैं रेडियो पे भी कुछ कई दिनों से इसके बारे में सुन रहा हूँ, कॉलर्स कुछ ऐसी चीजें बता भी रहे थे, अब जूही जी का प्रश्न है तो मैं उसे साथ में जोड़ देता हूँ। हाउ टू गेट आउट ऑफ द पेन ऑफ अ ब्रेकअप एंड हाउ टू गेट रिस्पेक्ट फ्रॉम आवर लाइफ पार्टनर। जब ये लॉकडाउन हुआ तो लॉकडाउन के चलते बहुत सारे लोग फिजिकली एक दूसरे से मिल नहीं पाए, फोन पर ही लोगों की बातचीत हुई, इसके चलते बहुत सारों के संबंध खराब हुए, बहुत सारे लोगों के रिश्ते टूट गए, रिलेशनशिप्स ब्रेकअप हो गए, तो इसकी वजह से भी कुछ लोग बहुत ज्यादा परेशान हो गए। जूही जी कहते हैं, प्लीज रीड माय क्वेश्चन। आई एम वेरी डिप्रेस्ड बिकॉज आई कुड नॉट मैरी समवन हु आई लव द मोस्ट, आई हैड टू मैरी समवन एल्स, बट नाउ ऑल द मोस्ट एवरी डे मी एंड माई हस्बैंड स्टार्ट वर्बल फाइट विद ईच अदर, व्हाट शुड आई डू। तो इनका प्रश्न यही है कि एक तो एक रिलेशनशिप का ब्रेकअप हुआ, उसकी वजह से किसी और से इनकी शादी हुई और आज उस चीज की वजह से भी उनके हस्बैंड के साथ वर्बल फाइट्स होते हैं, तो इन सब चीजों में क्या करना चाहिए।
जूही जी, मैं आपको ये कहना चाहूंगी कि हम संसार में आए हैं और संसार के नियम अनुसार आपने भी शादी की है, क्या कभी आपने ये सोचा है मेरी शादी का पर्पस क्या है? केवल हस्बैंड वाइफ बन जाना यही पर्पस नहीं है। हस्बैंड वाइफ एक दूसरे के पार्टनर कहे गए हैं ना, केवल हस्बैंड या केवल वाइफ कुछ नहीं है, आप पार्टनर हैं। पार्टनर माना आप साथी हैं, आप एक दूसरे के लिए कोऑपरेटिव हैं, कोऑपरेशन देने के लिए हैं। आपको अब अपनी जीवन की गाड़ी को एक दूसरे के सहयोग से चलाना है। एक गाड़ी आप देखते हैं, बस है, ट्रेन है, उसमें एक ड्राइवर भी होता है, को ड्राइवर भी होता है, कंडक्टर भी होता है। तो ये जो गृहस्थी की गाड़ी है, इसमें भी हम ड्राइवर और को ड्राइवर कहो, ड्राइवर और कंडक्टर कहो, तो भाई हम दोनों को तो मिलकर चलना ही पड़ेगा। अब हो सकता है उसकी कुछ बातें आपको पसंद ना हो और दूसरे को आपकी बातें ना पसंद हो, तो उन्हें थोड़ा हम हल्का कर दें। अधिकतर आजकल मैंने क्या देखा है, लोग क्या करते हैं, मान लो मैंने आपको कुछ कह दिया, आपने उस बात को इतना गांठ बांध लिया है कि उस बात को आप ना भुला पा रहे हैं, ना आगे जा रहे हैं, ना पीछे जा रहे हैं। अब सड़क पे हम जा रहे थे, मेरी गाड़ी की जो है खड़ी हो गई, अब वो ना साइड में मैं ले सकती हूँ, ना वो चल रही है, तो आप सोचिए पीछे कितना ट्रैफिक जाम हो जाएगा। इसी तरीके से ये जो हमारी गृहस्थी की गाड़ी है, इसको पहले थोड़ा समझें। ऐसा नहीं, शादी कोई खेल नहीं है, शादी एक बहुत पवित्र चीज है, लेकिन आजकल हमने उसको समझा नहीं। हम सोचते हैं बस ये भी एक रस्म है, शादी हो गई, मैं पति मैं पत्नी बस। नहीं, आप पति पत्नी नहीं है, आप इस दुनिया में कुछ देने के लिए आए हैं। तो अब आप इन बातों की शेयरिंग कीजिए, हर घड़ी एक दूसरे को कंप्लेंट ना करें, तू ऐसा तू ऐसा तू ऐसी तू ऐसी। ये कंप्लेंट करने के लिए शादी नहीं हुई थी, शादी इसलिए हुई थी कि आप अपने जीवन की नैया को, जीवन की गाड़ी को बहुत अच्छी तरह से, कभी मैं थक गई तो आपने चलाई, कभी आप थक गए तो मैंने चलाई, मिलजुल के ये शादी इसलिए हुई है। तो आप पहले शादी के पवित्र बंधन को आपस में बैठ के एक दिन शेयरिंग तो कीजिए कि हमने शादी क्यों की थी। कोई हस्बैंड वाइफ बनने के लिए शादी नहीं की है, इस जीवन की नैया को, जीवन की गाड़ी को स्मूथली चलाने के लिए शादी की है। तो जब हम इसकी इम्पोर्टेंस को समझेंगे, तब हमारी ये जीवन की नैया बहुत अच्छी चलेगी। ये आजकल जो आपकी शिकायत है, ये बहुतों की शिकायत है, हम एक दूसरे को बिल्कुल भी टॉलरेट नहीं कर पाते हैं। मैं दूसरे की 10 बातें अगर कमियां निकालती हूँ, तो दूसरा मेरी भी 20 कमी निकाल देता है। शादी कमियां निकालने के लिए नहीं है, शादी कंप्लेंट्स के लिए नहीं है, शादी एक दूसरे को अप्रिशिएट करने के लिए है। तो ये हमारा अपना एटीट्यूड है, मैं आपकी बात को कैसे लेती हूँ, आप मेरी बात को कैसे लेते हैं। थोड़ा सा एक दूसरे के लिए शुभ भाव लेकर, कि भगवान ने हम दो को साथी बनाया है, एक दूसरे को सवेरे उठते थैंक्स कीजिए, वेलकम कीजिए कि वेलकम, हमें आज का दिन मिला है, आइए चलो इकट्ठे चाय पीते हैं, चलो इकट्ठे चाय बनाते हैं। खुशी खुशी से दिन शुरू कीजिए और खुशी खुशी से रात को सो जाइए, तो आपका बहुत अच्छा ये जीवन चलेगा। और हमारी शुभ भावना है आप अपने जीवन में दोनों प्रसन्न रहें और सदा आगे बढ़ते रहें।
जी, बहुत ही अच्छी बात दीदी आपने कही कि होता है ऐसा कि हम दूसरों की कमियां देखने लगते हैं, मगर हम ऐसे काउंट करने लगे, जैसे आपने कहा कि अगर मैं 10 गिनता हूं तो सामने वाला 20 गिन लेता है। तो इसलिए अच्छाइयां देखना कोशिश करें, अप्रिशिएट करना शुरू करें। और जैसे आपने कहा, अगर आप किसी से रिस्पेक्ट चाहते हैं, तो अगर आप लोगों के छोटी छोटी चीजों को अप्रिशिएट करने लगे, उनके साथ कंपेनियनशिप की भावना रखें, आप उनको साथी और पार्टनर समझें और हर चीज को दिल से शेयर करने लगे, तो चीजें आसान हो सकती हैं। और दिन की शुरुआत में छोटी छोटी चीजें साथ मिलकर किया करें तो वो बहुत अच्छा हो सकता है। बहुत ही प्रैक्टिकल एडवाइस है दीदी, थैंक यू सो मच। अगले प्रश्न की तरफ मैं बढ़ता हूँ। ये प्रश्न YouTube से हमारे साथ दीपक गुप्ता जी पूछते हैं। दीपक पूछते हैं, दीदी जी आपका प्रोग्राम बहुत अच्छा है और आपकी आवाज भी बहुत अच्छी है और आपके चेहरे का मुस्कान हमें खुश कर देता है। ये आपके बारे में कह रहे हैं, प्रश्न के बारे में आते हैं। वो कहते हैं, लेकिन किसी ने हमारा दिल दुखाया हो 10 साल पहले, जब तक उनको बात याद आता है तो इतना क्यों दुख होता है, वो कहते हैं। ये बहुत बार ऐसा होता है कि किसी ने कोई चीज बहुत पहले कह दी होती है, बट वो पास्ट में कही हुई बात आज जब याद आती है तो अचानक ऐसा ही महसूस करने लगते हैं जैसे वो चीज, वो घटना वापस मेरे साथ आज फिर से हो रही है। तो दस साल पुरानी बात भी जब दुख देती है तो ऐसा क्यों होता है, ऐसा ये पूछते हैं। दीदी, इससे पहले कि जवाब दें, मैं हमारे उन दोस्तों को जो लोग प्रोग्राम देख रहे हैं, अगर आप कुछ पूछना चाहते हैं, कुछ फीडबैक देना चाहते हैं, अगर आप सिर्फ एक शाउट आउट भी देना चाहते हैं, तो आप YouTube पर और Facebook पर जहां पर भी आप ये वीडियो देख रहे हैं, इस प्रोग्राम के नीचे के लाइव कमेंट्स के सेक्शन में आप सवाल पूछ सकते हैं और कमेंट्स पूछ सकते हैं। साथ ही साथ हमारे कुछ दोस्तों ने मेडिटेशन के लिए समय एक्स्ट्रा देने के बारे में बात कही थी, तो उन सभी के फीडबैक्स को लेते हुए हर दिन शाम को 5:30 बजे क्षमा करें भारत के समय अनुसार 15 मिनट का ऑनलाइन गाइडेड मेडिटेशन होता है, तो उसमें आप हिस्सा ले सकते हैं। दीदी जी से अब हम जवाब लेते हैं।
आपने ये अच्छी बात पूछी है कि 10 साल पुरानी बात को भुलाया कैसे जाए। तो भाई एक बात बताइए, आपकी एक कोई शर्ट है बहुत पुरानी, 10 साल पुरानी, हो सकता है आपके शादी के समय का सूट हो, अब आपका साइज तो बढ़ गया है, वो आपको आता नहीं, आप क्या करेंगे? या तो किसी को दे देंगे कि भाई है तो मेरे शादी का, मेरे फ्रेंड ने, मेरे भाई ने उस समय आशीर्वाद रूप में दिया था, पर अब मैं पहन नहीं सकता, क्या करूं? या तो आप उसको दान दे देते हैं, और अगर कोई चीज पुरानी हो गई है तो उसको फेंक देते हैं। अब 10 साल पहले जो आपके साथ बात हुई थी, पहले तो आप मुझे ये बता दीजिए कि क्या वो बहुत अच्छी बात थी जिसको आप याद कर रहे हैं? जब आप कहते हैं कि हाँ नहीं वो तो अच्छी नहीं थी, फिर याद क्यों कर रहे हैं? उसको हमें छोड़ना ही है। वो कहते हैं ना, छोड़ो पुरानी बातें, कल की बात पुरानी, रात गई बात गई, अरे फिनिश हुआ ना। वो हो सकता है जिसने मुझे बहुत टॉर्चर किया था, टॉन्ट किया था, वो व्यक्ति भी मर गया है, अभी भी हम उसको याद करते रहते हैं। इसका मतलब कि मैं बहुत फ्री हूं, मेरे पास कोई काम नहीं है। अपने आप को आगे बढ़ाने का हम सोचें। 10 साल पहले हो गया हो गया। मैं कई बार देखती हूँ कई लोग बुजुर्ग हो जाते हैं, बूढ़े हो जाते हैं, कहते अब हमें कुछ याद नहीं रहता, अरे हम तो सब भूल गए हैं। लेकिन उनसे पूछो कि बाबूजी माताजी वो चाबी कहाँ है, वो आपको बता देगा चाबी कहाँ। चाबी उसको कभी नहीं भूलती है। अब वो क्यों नहीं भूलती है? ये भूल गया अभी चाय पी थी या नहीं पी थी, ये भूल गया अभी मैंने ये किया या नहीं किया, लेकिन चाबी नहीं भूलती है। अच्छा, मेरे बेटे की शादी में उसने कितना शगन डाला था वो उसको याद है, लेकिन लेकिन अभी मैंने क्या करना है कहता मैं भूल गया। तो बात ये नहीं है, बात यह है हम क्या भूलते हैं। जिसको हम प्रेफरेंस देते हैं उसको हम याद रखते हैं, जिसको प्रेफरेंस नहीं देते हैं भूल जाते हैं। तो इसलिए अब हमारे अंदर जो बहुत सी बातें जमा हुई हुई हैं, अगर हम उनको ही पकड़ के बैठे रहेंगे तो आप बताइए आपको यहीं बैठना है या आगे जाना है? अगर आगे चलना है तो छोड़ो पुरानी बातें, कल की बात पुरानी, अब तो नए जमाने में चलने के लिए नई तैयारी कीजिए और अपनी नई नई बातें सोचिए। क्योंकि अपने दिल को हम दुखाते रहेंगे, मान लो 1 साल पहले मेरा एक्सीडेंट हुआ और मेरी हड्डी टूट गई, अब मैं उसी का रोना रो रही हूँ कि अरे मेरी तो हड्डी टूट गई, फिर प्लास्टर हुआ, जुड़ गई, फिजियोथेरेपिस्ट ने ठीक भी उसको कर दिया, हाथ को चला दिया, अब क्यों रो रहे हो? तो अब खुशी खुशी काम कीजिए, नाचिए गाइए, काम कीजिए। आगे बढ़ने का हमारा एटीट्यूड ये होना चाहिए कि हमें आगे बढ़ना है, और आगे बढ़ने के लिए आगे की सोचें, आगे बढ़ने के लिए आगे की ओर देखें। आप जिधर अपनी बाइक या कार ड्राइव करते हैं उधर देखते हैं या पीछे देखते हैं? तो ये जीवन की गाड़ी चलाने के लिए भी मेरे मीठे भाई, आगे देखो, आगे बढ़ो।
बहुत ही अच्छी बात आपने कही दीदी। ये मोटिवेट भी करता है बहुत सारे लोगों को कि हम बीती हुई चीजों को वहीं छोड़ दें और आगे बढ़ें, क्योंकि ये बोझ लेके आगे चलना सही नहीं है, क्योंकि सफर लंबा होता जाता है और फिर बोझ ज्यादा महसूस भी होने लगता है। अगले सवाल की तरफ बढ़ते हैं। हमारे कुछ दोस्त जो सवाल पूछ रहे हैं YouTube या Facebook पर, उनके सभी सवालों को लेने की कोशिश तो पूरी नहीं हो पाती है, क्योंकि एक ही घंटे का समय होता है। मैं कभी कभार 2-3 क्वेश्चंस को क्लब कर देता हूं, तो हो सकता है मैं आपका नाम नहीं लूं, बट स्क्रीन पर आपका नाम जरूर दिखाया जाता है, बहुत सारे फीडबैक्स भी स्क्रीन पर दिखाते रहते हैं। अगला प्रश्न सीमा जोशी जी पूछते हैं फेसबुक से। आई फील वरीड अबाउट माई फैमिली एंड फ्रेंड्स एंड वेरियस थॉट्स डिस्टर्ब मी अलॉट, हाउ कुड आई हैंडल इट? सीमा जी का ये प्रश्न है कि मैं अपने परिवारजनों और मित्रों के बारे में बहुत चिंता करती हूँ और कुछ ख्याल ऐसे आते हैं, कुछ विचार ऐसे आते हैं जो मुझे बहुत डिस्टर्ब करते हैं, मैं इन चीजों को कैसे हैंडल करूं, ऐसा सीमा जी का प्रश्न है।
सीमा जी, पहली बात तो आप किस बात के लिए चिंता कर रही हैं? आज मैं इस चैनल के माध्यम से केवल सीमा जी नहीं, जो भी लोग सुन रहे हैं, मैं उनको एक संदेश भी देना चाहती हूँ। आजकल लोगों को चिंता अधिकतर इस महामारी के लिए, इस बीमारी के लिए है। सबको एक तो दिल से बहुत बहुत शुक्रिया करना चाहिए, हम भारत देश में पैदा हुए हैं जहां की संस्कृति है चिड़िया को दाना, कबूतर को दाना, गाय को रोटी, कुत्ते को रोटी, माना देने की भावना, सबके लिए शुभ भावना। चिंता क्यों है? जो बात की चिंता है आप शुभ भावना देना शुरू कीजिए। बच्चों की चिंता है आप उनकी चिंता मत कीजिए, लेकिन हर घड़ी सोचिए ये बच्चे आगे बढ़ेंगे, ये बच्चे भी उस भगवान की संतान है, बच्चे हैं, और उस पिता परमात्मा का हाथ इन बच्चों के सिर पर है। नंबर एक, आपको कोई भी संबंध की चिंता है, पति की है, भाई बहनों की है, चिंता मत कीजिए, लेकिन श्रेष्ठ चिंतन कीजिए। हम इस समय पर, हमें भगवान ने समय दिया है। आगे हम हमेशा कहते थे, अरे बहन जी आपका ज्ञान तो बहुत अच्छा है, हम चाहते भी हैं सुने, कभी कभी हम पीस ऑफ माइंड देख भी लेते हैं, बहुत मन होता है, आ नहीं पाते हैं। अब भगवान ने आप सबकी बात को सुनकर होल सेल में टाइम दिया है, ताकि आप भगवान को ये शिकायत ना करें कि टाइम नहीं है। अच्छा, हो सकता है ज्योग्राफिकली आप जहां रहते हैं आपके वहां से सेंटर बहुत दूर हो, तो भगवान ने कहा कि अरे बच्चे तुम चिंता क्यों करते हो, ये साइंस के साधन। अब आप देखिए, आप YouTube, Facebook, पता नहीं किस किस से चैनल से आप जुड़ के भगवान आपके घर में योगियों को भेज रहा है, कहता सुनो बच्चे सुनो, करो बच्चे करो। तो इसलिए चिंता मत कीजिए, भगवान आपकी इच्छाएं पूरी कर रहा है। केवल शुभ शुभ सोचिए, शुभ शुभ बोलिए और शुभ में रहिए और अपने जीवन को श्रेष्ठ बनाइए।
बहुत ही सिंपल तरीके से आपने ये चीज बताई दीदी, कि अक्सर हम ये सुनते आए हैं बड़े बुजुर्गों से, जब भी कुछ ऐसा गलत बोला जाता है तो लोग कहते हैं शुभ शुभ बोलो, तो ये शायद सिर्फ एक ही बात के लिए नहीं, वो सिर्फ बोलना ही नहीं है, सोचना भी है, करना भी है, एक एटीट्यूड को शिफ्ट करने की जरूरत है। और शायद ये समय उसी बदलाव की तरफ पॉइंट आउट कर रहा है जहां पर हमें अपने एटीट्यूड्स के, थॉट पैटर्न्स के बारे में सोचने की जरूरत है। अगला सवाल फेसबुक से हमारे साथ बबीता जुड़े हैं, बबीता अग्रवाल नाम है इनका। बबीता जी पूछते हैं, जब कोई क्लोज रिलेटिव्स बार बार हमें दुख पहुंचाते हैं तो उस बात का विचार मन में आते रहते हैं और उससे मुझे अशांति हो जाती है, मैं क्या करूं?
बबीता जी, अब इस बात को लेने के दो तरीके हैं। अब मेरा जो बहुत क्लोज रिलेशन है, हो सकता है वो मेरी खुद की माँ और बहन ही क्यों ना हो, जरूरी नहीं है कोई दूर के लोग हैं, माँ हो सकती है, अपनी बेटी हो सकती है, अपनी बहन, अपना भाई हो सकता है। मैं ऐसे बहुत से लोगों को जानती भी हूँ, वो दो भाई बहन है, एक दूसरे की शक्ल नहीं देखना चाहते हैं। अब अगर ऐसी कोई सिचुएशन है, पहले तो इसे स्वीकार कीजिए कि मेरा क्लोज रिलेशन वाला मुझे दुख दे रहा है, इसका मतलब मैंने भी इसको कभी दिया हुआ है, जो बीज बोया हुआ है ना उसका फल आ रहा है, बोए पेड़ बबूल के तो आम कहां से होए। तो अब क्या करें? चलो मैंने आपको दुख दिया था इसलिए मुझे दुख मिल रहा है, अब क्या करें? अब आप उसको एकदम शुक्रिया अदा करना शुरू करो। क्यों शुक्रिया? क्योंकि वो क्लोज रिलेशन में है, मैंने जाने अनजाने में गलती से आपको दुख दिया था और अब आप मेरे माँ भाई बहन, पति पत्नी, बेटा बेटी, फ्रेंड पड़ोसी कुछ बन के आ गए। अरे मैंने आपसे उधार लिया था, आप वापिस लेने आए हो, खुशी खुशी उसको दो, कोई बात नहीं। को आप कुछ कह रहे हैं, कोई बात नहीं भाई, मैं आपसे क्षमा मांग लेती हूँ। आप फिजिकली, आप मुंह से क्षमा ना भी मांगे, सवेरे उठकर रात को सोने से पहले भगवान से क्षमा मांग लीजिए, हे भगवान मेरे से जो भी भूल हुई है मैं क्षमा चाहती हूँ, मैं इस व्यक्ति को भी क्षमा करती हूँ, क्षमा बड़न को चाहिए छोटन को उत्पात। तो क्षमा तो वीरस्य का जो है भूषणम है, वीरों का भूषण है, आभूषण है, तो इसलिए आप क्षमा कीजिए सबको। मैं तो समझती हूँ सवेरे 10 मिनट बैठकर, शाम को 10-15 मिनट बैठ के हर भाई बहन को, दुनिया के हर व्यक्ति को ये कला सीखनी चाहिए। मैं आज के दिन अभी बैठ के सबको क्षमा करती हूँ जिन्होंने भी मेरे लिए बुरा किया है, कोई बात नहीं, कोई हिसाब था, पूरा हो गया। और मैंने अगर कोई गलती की है मैं उन सब से क्षमा मांग लेती हूँ। हमारे यहाँ एक जयपुर में आईपीएस हैं, अब तो वो डीजी रैंक पे हैं, हमेशा वो इतना हंसते रहते हैं। तो एक बार मैंने पूछ ही लिया, मैंने कहा भाई जी आप इतना खुश कैसे रहकर रहते हैं? वो कह देते हैं, कहते हैं कि जिन्होंने गलतियां की हैं उनको मैं माफ कर देता हूँ, और जहां मैंने गलती की है उनसे मैं क्षमा मांग लेता हूँ और मैं खुश रहता हूँ। तो मुझे लगता है यही जिंदगी का फंडा बहुत अच्छा है, इसको आप भी अपनाइए, आप भी खुश रहेंगे।
जी बहुत अच्छा दीदी। अगला सवाल यूट्यूब से कोयना पोपटानी जी पूछते हैं। कोयना जी का सवाल है, वो कहते हैं ओम शांति दीदी, आई बीन ट्राइंग टू कंट्रोल माई एंगर बट स्टिल नॉट गॉट दैट कंट्रोल विच आई वॉन्ट, वॉट शुड आई डू? ये अपने गुस्से पर कंट्रोल लाने की कोशिश कर रही हैं, मगर वो कहते हैं कि ये कंट्रोल नहीं आया है मुझ में, तो मुझे क्या करना चाहिए? कोयना नाम है इनका और ये यूट्यूब से हमारे साथ जुड़े हैं।
कोयना जी, आप आज से ये कहना छोड़ दीजिए कि गुस्से को कंट्रोल करना है। खुश हो गए ना आप, कहेंगे अच्छा कंट्रोल नहीं करना, गुस्सा करना है? नहीं, करना भी नहीं है, तो क्या करें? मैं क्या कहना चाहती हूँ आप बताइए। गुस्से को कंट्रोल करेंगे तो वो उससे और कई गुना ज्यादा आपको आएगा। जैसे कोई प्लास्टिक होता है ना, इलास्टिक की चीज आप यूं खींचते हैं, मान लो वो आधा मीटर की है, आपने यूं खींचा उसको एक मीटर बनाया, जब आप छोड़ेंगे ना आपको, आप देखिए कैसे वो छूटेगा, बल्कि हो सकता है आपको हिट कर दे। तो गुस्से को कंट्रोल नहीं करना है, कंट्रोल एकदम छोड़ दीजिए। तो आप कहेंगे क्या करना है? अभ्यास करना है। किस बात का अभ्यास करना है? मैं क्या चाहती हूं? मुझे शांति चाहिए, मुझे खुशी चाहिए, मुझे आनंद चाहिए, मैं शांत कैसे रहूं? अभी आजकल गर्मी का सीजन है, मुझे गर्मी बहुत लगती है, तो मैं क्या करूं? अपने पंखा चलाऊंगी अपने कमरे में? नहीं नहीं अभी भी गर्मी बहुत है तो कूलर चलाऊंगी। नहीं नहीं मैं तो अफोर्ड कर सकती हूँ, कूलर की है इतनी आवाज और इतनी अच्छी मजा नहीं आता है, एसी लगा लेती। लेकिन मुझे कुछ ना कुछ अपनाना पड़ेगा। ऐसे ही शांति के लिए, खुशी के लिए अभ्यास करना पड़ेगा, और वो अभ्यास एक मिनट या एक दिन का नहीं है, हर पल मुझे हर बात में। मैं भोजन खा रही हूं, शांति से खाया, पानी पिया शांति से पिया। लोग आजकल आते हैं खड़े खड़े गिलास उठाया, यूं किया और पानी पिया और चल दिया। खाना भी खाएंगे, आजकल तो फैशन हो गया है बफे सिस्टम, हाथ में लिया यूं यूं खाएंगे। अरे मेरे भाई, थोड़ा सा शांति से बैठो, बैठ के पानी पियो, बैठ के भोजन करो, बैठ के बात करो, खड़े खड़े। अच्छा चलो आजकल मोबाइल है, वो कान पे लगा लेंगे, घूमते रहेंगे इधर से उधर, उधर से उधर बात कर रहे हैं। कहीं शांति का अभ्यास करते हैं क्या हम? तो कोई ना जी, आप ये अभ्यास की प्रक्रिया को प्रारंभ करें, और सारा दिन अपने आप को देखिए मैंने कौन कौन सा काम शांति से किया, वो डायरी में लिखना शुरू कर दीजिए। मैंने भोजन किया शांति से किया, नाश्ता किया शांति से किया, चाय पी शांति से पी, अपनी हस्बैंड वाइफ बच्चे भाई बहन उनसे बात की शांति से की, मैं अखबार पढ़ रही थी मैंने शांति से पढ़ी, या फटाफट अरे ये क्या न्यूज है, न्यूज वाले कोई अच्छी न्यूज भी नहीं देते हैं भाई, वो तो न्यूज तो वही आएगी जो बाहर हो रहा है। आपको पढ़नी है तो पढ़ लो, नहीं पढ़नी है तो छोड़ दो। तो ये अभ्यास कीजिए, मुझे शांति से रहना है। तो मैं हमेशा कहती हूँ क्रोध छोड़िए मत, आप छोड़ेंगे तो ये और बढ़ेगा। कंट्रोल मत कीजिए लेकिन अभ्यास कीजिए। किस बात का? शांति से रहने का। किस बात का? प्रेम से रहने का। किस बात का? आनंद से रहने का। और उन्हीं शब्दों का प्रयोग, मैं तो आपसे प्यार से बात करना चाहती हूँ, मैं आपसे शांति से। हम क्या कहते हैं, अरे इसको जब तक दो चार सुनाएंगे नहीं ना, डांट नहीं लगाएंगे, ये समझेगा भी नहीं, और फिर पता नहीं उसको दो चार गाली भी निकाल देंगे, ये तो क्या 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 पता नहीं क्या बोल देंगे। अब बताइए कैसे आएगी मेरे अंदर शांति, कैसे छूटेगा क्रोध? तो क्रोध कंट्रोल करने से क्रोध जो है वो नहीं छूटेगा, लेकिन शांति, प्रेम, धैर्यता, आनंद, इनका अभ्यास करने से क्रोध छूटेगा, और उसके लिए मेडिटेशन की आवश्यकता है।
बहुत ही अच्छी बात है दीदी जो आप कह रहे हैं कि मेडिटेशन की आवश्यकता है, और बहुत सारे लोग इस बात को समझ भी रहे हैं पिछले कुछ दिनों में, जो मेडिटेशन के लिए इंटरेस्ट दिखा रहे हैं लोग, उससे हमें मिल भी रहा है, डिमांड भी लोगों की पता चल रही है, बहुत सारे लोग ऑनलाइन मेडिटेशन सीखना चाहते हैं, ऐसे बहुत सारे रिक्वेस्ट भी आ रहे हैं, और उन चीजों को हम एड्रेस करने की कोशिश भी कर रहे हैं, और हर दिन शाम को 5:30 बजे ब्रह्मा कुमारीज के फेसबुक पेज पे और ब्रह्मा कुमारीज के ऑफिशियल यूट्यूब चैनल पर, यानी youtube.com/ब्रह्मा कुमारीज और facebook.com/ब्रह्मा कुमारीज पर लोग 15 मिनट का ऑनलाइन मेडिटेशन, इंग्लिश में गाइडेड मेडिटेशन सीख सकते हैं। अगर आपने सीख भी लिया है तो हर दिन आप पेज विजिट करें और 15 मिनट साथ में मिलकर मेडिटेशन जब आपको करने को मिलता है, जब आपको पता चलता है कि हजारों लोग एक साथ मिलकर कर रहे हैं, तो अपने आप में एक एनर्जी क्रिएट होती है, एक वाइब्रेशन क्रिएट होता है, और आपको भी मोटिवेशन मिलता है कि चलिए हर दिन कोई है जिनके साथ हम मिलकर मेडिटेशन कर सकते हैं। तो आप सभी लोग मेडिटेशन कर भी सकते हैं, और जैसे दीदी ने कहा, दीदी के साथ भी आज हम मेडिटेशन करने की कोशिश करेंगे। मैं एक और सवाल लेना चाहता हूँ, ये सवाल भीष्म हिंदुजा जी का है, जो कहते हैं ओम शांति, और ये फेसबुक से हमारे साथ जुड़े हैं। वो कहते हैं, हाउ टू रिमेन फोकस्ड एवरी टाइम इरिस्पेक्टिव द सिचुएशन। हम अपने आप को फोकस्ड रखने की कोशिश करना चाहते हैं, बट सिचुएशन के हिसाब से चीजें बदल जाती हैं, हम अपना फोकस खो देते हैं, तो सिचुएशन कैसी भी क्यों ना हो बट हमारा फोकस बना रहे, इस चीज पर हम कैसे ध्यान रख सकते हैं?
जब फोकस शब्द यूज करते हैं तो हमें शायद बहुत मुश्किल सा लगता है ना, कई लोग कहते हैं कंसंट्रेशन कैसे करें, फोकस कैसे करें, मन को कैसे लगाएं। मान लीजिए आप सड़क पे जा रहे हैं, आपको अपने घर से अपने ऑफिस में जाना है, दुकान पर जाना है, किसी काम से जाना है। अब आप बाहर निकले, सड़क पर एक बारात जा रही थी, आप क्या करोगे? साइड से निकलते हो या नहीं निकलते हो, या भूल जाते हो कि अरे मुझे ऑफिस जाना था, आप बारात देखने लग जाए। आप घर से निकले, बाहर कोई जुलूस जा रहा था, कोई प्रदर्शन हो रहा था, आप उसको देखने लग जाएंगे? नहीं, आपके दिमाग में है मैं कहाँ जा रहा हूं। हो सकता है आप केवल घर से निकले हैं सब्जी खरीदने के लिए, तो आप क्या और चीजें देखते रहेंगे? नहीं, आप जिस बात को चाहते हैं वहां स्वतः ही फोकस रहते हैं। फोकस, कंसंट्रेशन, एकाग्रता, ये मुश्किल बातें नहीं है, ये सबसे सहज है। मेरा तो ऐसे भाई बहनों से प्रश्न होता है कि अपने फोकस को हटाएं कैसे, कंसंट्रेशन तोड़ें कैसे। मुझे जो करना है, आप घर से निकले हैं, आपकी सवेरे आंख खुली, आज आपको सारा दिन में क्या करना है, बस आप उस पे फोकस हो जाएंगे। लेकिन हम क्या करते हैं, हमें पता ही नहीं मुझे आज सारा दिन क्या करना है। उठ गए, थोड़ा इधर उधर देख लिया, थोड़ा अखबार देख लिया, थोड़ा टीवी देख लिया, थोड़ा यूट्यूब देख लिया, चलो भाई आज क्या करना, अच्छा आज कोई खास काम तो है नहीं, और कुछ नहीं है तो आपस में लड़ भिड़ लिया। तो ऐसे मत कीजिए, ये जीवन बड़ा अनमोल है, मिले ना बारंबार, इस श्रेष्ठ जीवन को मैं बनाने के लिए इस धरा पर आई हूँ, तो मुझे अभी भगवान ने समय दिया है। कोई भी आप काम करें, ऑफिस में जाएं, दुकान पर जाएं, घर में भोजन बनाएं, जो भी कर्म करना है वो मुझे श्रेष्ठ करना है। हम क्या सोचते हैं जीवन श्रेष्ठ माना, पता नहीं कुछ हाई फाई, मैंने बहुत अच्छे कपड़े पहन लिए, बहुत अच्छा मेरा जॉब हो गया, मेरा बहुत शायद यही श्रेष्ठ है। नहीं, श्रेष्ठता माना मेरी दृष्टि कैसी है, मैंने किसी को देखा रिस्पेक्टेड तरीके से देखा, रिस्पेक्टेड बोल बोले। एक छोटा सा काम है, मैं हमेशा कहती हूँ, आपने किसी को पानी का गिलास दिया, आपने कैसे दिया? एक है आप ट्रे में ले आए, चाहे हाथ में भी लाए, एक है लाए और टेबल पे ठा दे के रख दिया, एक है आप लाए, आपने प्यार से कहा पानी लीजिए, दूसरा कहता है नहीं नहीं मैं तो पी के, तो चलो नहीं लिया तो भी आप प्यार से, ऐसे नहीं कोई कोई कहेंगे अरे मैं तो आपके लिए पानी लेके आया और आपने पानी भी नहीं पिया। नहीं, मुझे हर कर्म को जो है बहुत रॉयल्टी से करना है, रिस्पेक्टेड वे से करना है, प्यार से करना है, तो हमारा फोकस बना रहेगा, हमारा जीवन भी श्रेष्ठ बन जाएगा। फोकस करना कोई मुश्किल नहीं है।
बहुत अच्छी बात है दीदी। अगला सवाल मैं ले रहा हूं, ये मिलता जुलता सवाल है और दो लोगों का सवाल है। गोविंद कुमार शर्मा हमारे साथ फेसबुक पे हैं और वो कहते हैं कि कैसे हम अपने आप को खुश रखें। ये आज के लिए आखिरी सवाल होगा क्योंकि हम ऑलरेडी 50 मिनट्स पे हैं, तो ये लास्ट क्वेश्चन होगा। दो लोगों ने मिलते जुलते सवाल पूछे हैं, तो ये कहते हैं कि अपने आप को खुश कैसे रखें। आपने शुरुआत में जो बात कही कि आप खुश रहें, दूसरों को खुश करें, ऐसा ही मिलता हुआ सवाल ये भी है कि श्याम जसरानी जी भी ये पूछते हैं कि हम हमेशा हैप्पी कैसे रह सकते हैं। तो ये दो लोगों का प्रश्न है और गोविंद कुमार जी अपने बच्चों के साथ का फोटो दिखा रहे हैं, तो वो समझ सकते हैं कि खुश रहना इंपॉर्टेंट इसलिए भी है कि अगर आप खुश रहते हैं तो फैमिली में बच्चे भी खुश रहते हैं। तो ये प्रश्न है दो लोगों के।
भाई आज तो सारी वार्ता ही गोविंद जी इसी बात पर हुई है कि खुश ही रहना है। एक तो आप अपने जीवन का ये स्लोगन बना ले, मोटो बना लिए। आप जिस कमरे में रहते हैं वहां भी बड़ा बड़ा लिख के रख लीजिए, मुझे खुश रहना है और खुश रखना है। पहली बात ये। अपने कमरे में अच्छे अच्छे आप चित्र लगाइए खुशी के, ऐसे नहीं कोई ऐसे मुरझाए हुए कोई डिप्रेशन के, नहीं, खुश रहना है। भोजन खाने बैठो खुशी से खाओ, ऐसे नहीं अरे आज क्या बना घिया, तुम्हें पता नहीं है मैं तो घिया कभी पसंद ही नहीं करता हूं, नहीं, अच्छा आज क्या बना है, घिया बना है, ओ बहुत अच्छा, भगवान का प्रसाद है, प्यार से खाइए। पहली बात, एक टोटल जो बात मैं आप सबसे कहना चाहूंगी, कोई भी बात है वो खुशी है, वो हमारे जीवन में सेटिस्फेक्शन है, वो हमारे जीवन में प्रेम है, रिस्पेक्ट है। ये कोई ऐसी चीज नहीं है कि आज मैंने सफेद साड़ी पहन ली, कल मैंने लाल पहन ली, कल मैंने हरी पहन ली, ये ऐसी चीज नहीं है। मान लो मेरे पास येलो कलर की साड़ी नहीं, चलो आज मैं मार्केट में जाती हूँ शॉपिंग करके ले आती हूँ। हर कर्म में, हर थॉट में मेरी ये थॉट प्यार से भरी हुई है या दूसरे को मैं ईर्ष्या द्वेष की थॉट्स भेज रही हूं, मैं जो बोल रही हूं प्यार से बोल रही हूं, मैं जो अभी मान लीजिए मॉर्निंग वॉक करने गई, तो वॉक में गई मैं यही देखती रही कौन जा रहा है कौन आ रहा है, ये कैसा है, ये फलाना, कुछ मित्र मिल गए तो इधर उधर की बातें डिस्कस कर ली, बिजनेस की, पॉलिटिक्स की, इकोनॉमी की, ये मत कीजिए। अपने जीवन के लक्ष्य को निर्धारित कीजिए। हमारे पास करोड़ों हो लाखों हो, प्यारे भाई बहनों, इनसे खुशी नहीं मिलेगी। खुशी मुझे मेरे अंदर से मिलेगी, खुशी मेरे मुझे मेरे कर्म से मिलेगी। इसलिए मैं हर कर्म में ये देखूं, मैंने खुशी से ये किया। नहाने भी गए खुशी से किया, नहाने गए अरे टावल कहाँ है, मुझे टावल नहीं मिल रहा, अरे मेरा कपड़ा, उसमें भी हल्ला कर लेते हैं लोग, अरे नहीं मिल रहा है, थोड़ा ढूंढ लीजिए कहाँ रखा है। आपका अपनी लाइफ का एक सिस्टम हो, मुझे अपनी चीज यहाँ रखनी है। मैं एक बात कह के बात को पूरी करूंगी, मैं कई बार अपनी बहनों को भी कहती हूँ, मैं अपनी चीजें अपनी अलमारी में ऐसे सेट रखती हूँ कि वहां लाइट हो ना हो आप मुझे कहेंगे ये चीज ले आओ, मैं तो अंधेरे में जाके उठा के ले आती हूँ। अपने हाथ की रखी हुई चीज मैं उठा के ले आऊंगी, मुझे ढूंढनी नहीं पड़ेगी, मैंने कभी ढूंढने में टाइम वेस्ट किया ही नहीं। इसी तरीके से मुझे अपने जीवन में सबके साथ पहले खुशी के बीज बोना शुरू कर दो। जैसे छोटा आजकल तो फैशन हो गया, गमले में भी लोग धनिया पुदीना उगा रहे हैं, तो आप भी अपने घर में अपने बच्चों के साथ शुभ भावना का, खुशी का, प्यार का धनिया पुदीना लगाना शुरू कर दो, तो आप खुश रहेंगे और खुश रखेंगे। थैंक यू, ओम शांति।
आपने ये जो एग्जाम्पल दिया कि खुशी भी ऐसे धनिया पुदीना जैसा आसान हो जाए तो कितना मजा आ जाए फिर तो। लोग यूजुअली धनिया वगैरह तो गार्निशिंग के लिए यूज करते हैं, बट लाइफ में भी ये गार्निशिंग के लिए जरूरी है कि हम खुशी जैसी चीजों को ग्रो करना सीखें अपने फैमिली में, हम खुद पहले खुश रहना सीखें और चीजों से खुशी नहीं आती है, खुशी आंतरिक चीज है। ये आपने बहुत ही अच्छी बात कही और इस पर अगर हम फोकस करना शुरू करेंगे तो शायद चीजें बहुत आसान हो जाएंगी। हम दूसरों को खुश भी रख सकते हैं, फैमिली हमारी खुश रहेगी क्योंकि हम खुद खुशी के सोर्स बन जाएंगे। दीदी बहुत बहुत धन्यवाद आपका, और मैं हमारे सभी दोस्तों का धन्यवाद करना चाहता हूँ जिन्होंने आज सवाल पूछे, कमेंट्स लिखे। मैं सारों के कमेंट्स नहीं पढ़ पाता हूँ, समय बहुत कम होता है, ऐसे एक घंटे में हम कुछ ही प्रश्न ले पाते हैं। जिनके मैं प्रश्न नहीं ले पाया उनके लिए मैं पहले से अपोलोजाइज करता हूँ। कोशिश ये रहती है कि ज्यादा से ज्यादा हम प्रश्न लें। कल के दिन भी कुछ सवाल लेने की कोशिश रहेगी। हमारे कुछ दोस्तों ने ये प्रश्न पूछा था कि उनको इंग्लिश में आंसर चाहिए, हालांकि हम मेजॉरिटी ऑडियंस को देखते हुए प्रोग्राम को हिंदी में कर रहे हैं, बट द प्रोग्राम विल बी इन इंग्लिश ऑन एवरी संडे। सो ईच संडे बी द चेंज विल हैव एन इंग्लिश क्वेश्चन आंसर सेशन वेयर यू कैन आस्क क्वेश्चंस इन इंग्लिश। सो यू कैन ऑलवेज कम बैक ऑन संडे ऑन द वीकेंड वेयर इंग्लिश आंसर्स वुड बी गिवन टू द क्वेश्चंस दैट यू वुड आस्क। दीदी आपका मैं दोबारा से धन्यवाद करना चाहता हूँ हमारे सभी दोस्तों की तरफ से जिनके लिए आपने इतने सरल तरीके से उत्तर दिए, स्पिरिचुअलिटी को इतना सिंप्लीफाई किया कि उसे फॉलो करना, उसे अप्लाई करना आसान हो सके। बहुत बहुत धन्यवाद हमारे सभी दोस्तों की तरफ से कि आज आप हमारे साथ खास जयपुर से जुड़ पाए।
आपका भी बहुत बहुत धन्यवाद, मुझे बहुत अच्छा लगा, आप सबने बहुत अच्छे प्रश्न भी पूछे। मैं समझती हूँ आप सबको लाभ हुआ भी होगा, आगे भी मिलते रहेंगे। आप सबका और श्री निधि भाई आपका भी बहुत 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 धन्यवाद, शुक्रिया, थैंक्स।
दीदी हर दिन हम कोशिश ये करते हैं कि हमारे मास्टर्स ऑफ मेडिटेशन जो ब्रह्मा कुमारी के एक्सपीरियंस्ड योगीज हैं उन सभी के साथ मिलकर हम एक्सपीरियंस करें, उनके सानिध्य में हम मेडिटेशन करें, उनके वाइब्रेशंस को भी हम एक्सपीरियंस करें। तो मैं आपसे रिक्वेस्ट करता हूँ कि नेक्स्ट 4-5 मिनट के लिए आप हमें मेडिटेशन कराएं और हमारे साथ मेडिटेशन करें। तो ओवर टू यू दीदी मेडिटेशन के लिए।
अभी आप सब भाई बहने जो भी जहां भी बैठे हैं और इन साधनों का प्रयोग कर रहे हैं, आप थोड़ा सा अपने अपने स्थान पर सीधा होकर बैठे। और आज के दिन हमने सब कुछ जो सुना, जो कहा, चलो इस ये सब कुछ मेरे जीवन में वरदान बन जाए। मनुष्य के जीवन में सबसे बड़ा वरदान है खुशी, आनंद, प्रेम। आत्मा की पहली क्वालिटी ही है शांति। आप अपने मन में संकल्प लाएं, मैं शांत स्वरूप आत्मा हूं, और अपने पूरे ध्यान को मस्तक के बीचों बीच, भ्रिकुटी के बीच में ले आए। फोकस करें भ्रिकुटी के बीच में, मैं शांत स्वरूप, पवित्र स्वरूप, प्रेम स्वरूप, आनंद स्वरूप आत्मा। सर्वशक्तिवान पिता परमात्मा स्वयं भी शांति के सागर, प्रेम के सागर, आनंद के सागर है, सत चित्तानंद के सागर। पिता परमात्मा की मैं संतान, बहुत खुश नसीब, भाग्यवान आत्मा। महसूस कीजिए सर्वशक्तिवान पिता परमात्मा का प्रकाश मुझ आत्मा पर आ रहा है, और मैं आत्मा एकदम आनंदित, ये प्रकाश पाकर प्रफुल्लित हो गई। कितनी सौभाग्यशाली आत्मा हूं जो सर्वशक्तिवान के करीब हूं। महसूस कीजिए, आने दें उसका प्रकाश स्वयं में। सर्वशक्तिवान का प्रकाश पाकर मैं आत्मा आनंदित हो गई हूं। यही मेरा सच्चा स्वरूप है। मैं सत्य स्वरूप, प्रेम स्वरूप, आनंद स्वरूप आत्मा। इन शक्तियों को, गुणों को स्वयं में समाले और इसी आनंदित स्थिति में अपने कार्य क्षेत्र की ओर जाने के लिए मैं आत्मा तैयार हूं। चारों ओर ये प्रकाश फैलाएं, वाइब्रेशंस फैलाएं। ओम शांति, शांति, शांति।